अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महाप्रदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्रिजे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय अङ्गश्यामलिं छटाभिरवितो मन्दे कृतेन्दीवरं जड्डञ्जाकुटरोचिसङ्गविदतमुपट्टम्बरस्य बृन्दारण्यनिवासिनं मृदुलसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितो जलभुजं ध्यायेन् दामो आज कार्तिक महीने की प्रतिपदा है। आज प्रतिपदा के दिन ही गोवर्धन की पूजा हुई। गोवर्धन पूजा एक प्रतिपदा दिन है तो है। गो की पूजा, ब्राह्मणों की पूजा, ब्रजवासियों की पूजा, गुरुवर्ग की पूजा और गोवर्धन की पूजा। गोवर्धन की पूजा में गो क्रीड़ा गायों को खिलाते हैं और उनको क्रीड़ा कराते हैं और सबकी पूजा गुरु की,
गो ब्राह्मण
ब्रजवासी सब वैष्णव सबकी पूजा की जाती है। तो आज हम लोग अभी प्रवचन के बाद में यहाँ पर ठाकुर जी का, गिरिराज जी का अभिषेक होगा और इसके बाद में हम लोग प्रवचन के बाद में गो की पूजा करेंगे। गैया एक सुंदर अच्छी लाई जाएगी और उसकी परिक्रमा करके, उसकी पूजा करके आरती उतारेंगी और फिर इसके बाद में करीब करीब 10:30 बजे सब लोग प्रस्तुत रहेंगे। हम लोग यहाँ से महिलाएं अपने सिर पर कलश लेंगी और पूजा का सब द्रव्य हम लोग ले करके और ठाकुर जी के भोग के लिए जो जितना प्रकार का बना है वो सब चीज़ों को ले करके कीर्तन करते हुए हम लोग जहाँ पर पूजा करते हैं गिरिराज जी की वहाँ पर हम लोग जाएंगे। फर्स्ट हियर आफ्टर
क्लास
डाउन वी विल डू गो पूजा, ब्राह्मण पूजा, ब्रजवासी पूजा एंड देन एट अबाउट 10:30 विद प्रोसेशन लेडीज भक्त टेकिंग कलश ऑन देयर हेड्स एंड ऑल प्रिपरेशंस विथ ऑल ऑन हेड डूइंग कीर्तन We will go to Govardhan Giriraj directly. Directly Govardhan. And there we will do Swasti Vachan first. Swasti Vachan. And then we will do Abhishek. We will keep two big pots. And after द्रव्य शुद्धि, we will keep five things: milk, curd,
honey,
sugar, ghee. Mixing all together, and hundreds of pots,
small pots.
Brahmachari 3, 4, 5, one side also, and in a row, all will be peacefully, they will do Abhishek. No hurry, nothing hurry. I want to give chance to all, top to bottom, that all should with their own hand, and Giriraj, so long and high, with hands we should Abhishek him. And then aarti and other things will be done. So I think by doing so, Lakshmi may beg here and there, but those who will
participate
in this Annakoot Govardhan, they will have never to beg in their lives and lives. And you can have any broom from Govardhan as you like. If you like marriage, at once Giriraj will give broom. And if you want money, wealth, reputation, everything, easily he will do.
These are brooms, Guruji. These are not books. These are brooms, not books.
And if he want Radha Dasya, then he will have to think something. Whether he is or she is qualified or not, then he will first make qualified and then he will. So today is very important day. We will do all these things. Perhaps we have told Srimad Bhagavatam this story of Giriraj Govardhan. Have you told? हम लोगों ने इसका जिक्र किया या अन्नकूट कैसे हुआ?
Not yet.
कुछ नहीं.
गिरिराज गोवर्धन कुछ नहीं बोला.
You have not told.
एक दिन जसोदा मैया पकवान बना रही थी और कन्हैया कृष्ण मैया के पास में गए. आज किस लिए बना रही हो? तब मैया झुंझुला उठी, जाओ तुम खेलो, समय नहीं, मेरे जन्मदिन के लिए बना रही है. कि दाऊ भैया के जन्म तिथि उपलक्ष में बना रही है. जब वो नहीं बतलाई तो नंद बाबा के पास में गए, उनकी गोदी में बैठ करके पकड़ करके बोले, जे बाबा मैया क्या कर रही है, आज बना रही है, आज क्या हो रहा है? उन्होंने कहा, इंद्र की पूजा हो. इंद्र की पूजा किस लिए? तो इसलिए कि वही हमारे अन्नदाता हैं, गाय के लिए घास वही देते हैं, हमारे पानी पीने के लिए वही देते हैं, सब कुछ वही करते हैं. तो कैसे? वो वर्षा कराते हैं जिससे कि घासें होती हैं, शस्य बीज गेहूं इत्यादि पैदा होते हैं, और फिर उसी से हम जीवन धारण करते हैं. इसलिए उनकी पूजा करनी चाहिए. हमारे पुरुष लोग पूजा करते थे. इंद्र कृष्ण ने कहा, जहाँ पर उनकी पूजा नहीं होती वहाँ पर कैसे पानी बरसता है, कैसे लोग रहते हैं? हमारे समझ से इंद्र की पूजा न कर, गिरिराज गोवर्धन की पूजा चाहिए, जो गायों का वर्धन करते हैं, गाय ही हमारा धन है, गोधन है, और जो कुछ पानी होता है ये गिरिराज गोवर्धन बादलों को रोक करके पानी बरसाते हैं। इंद्र का कुछ नहीं है इसमें, इंद्र को घमंड हो गया था कि मैं ही सब देवताओं में श्रेष्ठ हूँ, मैं ही सबसे। कृष्ण को भी कुछ नहीं गिनते थे, उनके कहने से नंद बाबा इत्यादि मान गए। और दूसरे दिन करोड़ों गोप गोपियां सब गिरिराज गोवर्धन के लिए पूजा करने के लिए यहीं पर एकत्रित हुई और उनकी पूजा 1650 से सब करके उनको भोग लगाया गया। कितने छाकड़ों में, गाड़ियों में भर करके करोड़ों लाए गए थे, मालपुआ पूरी कचौड़ी अन्न रोटी सब्जी कढ़ी सब कुछ, दही दूध मक्खन सब तरह तरह की। और कृष्ण ने खुद पुरोहित बन करके पूजा करा करके उनका भोग लगवाया और गिरिराज गोवर्धन भी मूर्ति धारण करके खड़े हो गए। और भोग लगाने के बाद में दोनों हाथों से सब कुछ मिनटों में ही सब खा लिया और कहने लगे आनो रे और ले आओ और। कृष्ण कहा कि हम लोग गरीब ब्रजवासी हैं, हम लोगों के द्वारा ये संभव नहीं है, आप अपने आप तृप्त हो जाइए। तब वहीं से उन्होंने मानसी गंगा कुसुम सरोवर और सबका पानी जितना था वो सब पी लिए और डेकार दिए और फिर जैसा था वहां पर सब वैसा का वैसा ही भरपूर हो गया। और गिरिराज जी ने कहा जब बर मांगो तो ब्रजवासी और क्या बार मांगते। उन्होंने कहा यशोदा का जो लाला है इसके ऊपर में विपत्तियां आ रही है ना है, और सर्वदा सुखी रहे, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। गिरिराज जी ने ओ मस्ती कहा जो कोई गिरिराज जी की परिक्रमा करता है, गिरिराज जी खड़े रहते हैं जब क्या चाहता है, यदि किसी प्रकार से सुन लिया जागतिक लौकिक वर तो उसी समय दे देते हैं, और नहीं तो जब तक नहीं होता तब तक उसके पीछे पीछे रह करके और उसकी मनोकामना को पूर्ण करने वाले। असल में ब्रज के राजा गिरिराज ही हैं, नंद बाबा भी कृष्ण भी ब्रजवासी भी सभी इनकी पूजा करते हैं, यहाँ तक कि इंद्र को भी इनकी पूजा करनी पड़ी। इसलिए आज हम लोग यहाँ से जाकर के गिरिराज जी की स्वयं वहीं पर पूजा हम करेंगे। नाउ यू कैन टेल समथिंग।
So the history of this Gaudiya Puja is as follows. Early one morning on this day, Krishna woke up and saw that Mother Yashoda was preparing many different types of preparations, hundreds and hundreds. Therefore, again and again, Krishna went to Mother Yashoda and asked, oh, what's the special occasion? What's happening? Is it my birthday? Mother Yashoda said, oh, go away and play. I have no time. Therefore, Krishna went to Nanda Baba and sitting on the lap of Nanda Baba and catching him, he asked, oh, Baba, please tell me, what's the special occasion today? So, see, Nanda Baba said, today is the day of Indra Puja. So Krishna, our forefathers have been doing here in Vrindavan for a long time. So Krishna asked, what does Indra do? Why do we worship him? And Baba said, Indra gives us, he is Anadatta. He gives us all types of fruit grains. By rain, we get fruit grains, we get grass, we get drinking water. Indra maintains all of the entities, so on this day we worship him. So Krishna wanted to cut the puja of Indra. Therefore he said, but Baba, those places which never worship Indra, those places also get ready. There I think Indra has nothing to do with this so much. Because Govardhan is very tall. He blocks the rain clouds and causes the rain to fall. And Govardhan, he is the one that Vardhan, that nourishes the cows, the gopis, all of the goats, everyone. Therefore we should worship Govardhan. So the next day Baba and all of his bhaktis offered thousands and thousands of preparations to Govardhan. That time, Krishna himself, taking the position of head priest of Purohit, Krishna offered all the food grains to Govardhan. That time, Govardhan assumed a huge form and began to take all the offerings. Not only did he take all the offerings, but all the water in Manasi Ganga, Kusum Sarovar, he drank all of that as well. And then he returned everything as it was. Therefore, Giriraj was there. And Giriraj said, Krishna said, look, Giriraj is there, manifest before us. Everybody can take a benediction. Then all the Brijvasis prayed. Our Krishna has many problems and obstacles. Many demons have come to kill him. Therefore, we only have one desire. May the son of Yashoda be happy and have a long life. All begged for that boon from Sri Giriraj. Therefore, whoever does parikram of Sri Govardhan, Sri Giriraj Maharaj follows behind them listening if they have any material desires. If you have any desire for wealth or women or anything, Giriraj will give that. But if you have desire for Radhadasyam, then Govardhan will think, he'll little be careful. Can I give that person? If he is not qualified, then Govardhan will make him qualified. And if they are qualified, then he will give that thing, the service of Srimati Radhika. Therefore, the real king of Vrindavan is Giriraj Maharaj. Why? Because Nanda Baba and Krishna himself, everyone worship him. Even Indra worships him. So he is the real Giriraj Maharaj.
तुम बोलना चाहती हो तो उनके वैशिष्ट के संबंध में बोलो. She will speak the glory of Giriraj Govardhan. जरा जोर से बोलो.
गुरुदेव के आदेश से ब्रज भाषा में मैं श्री गिरिराज गोवर्धन के संबंध में जैसा गुरुजी मुझे प्रश्न संचालित करेंगे मैं कुछ आपके सामने प्रस्तुत करूंगी. श्री गिरिराज गोवर्धन को हमारे सभी आचार्यों ने और सभी वैष्णवों ने अपनी अपनी अनुस्तुतियों से अवलोकन किया है. सनातन गोस्वामी मदन मोहन जी की आराधना करते थे, लेकिन वृंदावन में मदन मोहन जी की सेवा करने के साथ साथ वो अप्रसन्न थे. विराजी आया करते हैं वहां पे जाके श्री विराज गोवर्धन की परिक्रमा लगाया करते. परिक्रमा लगाते लगाते जब वो वृद्ध है गए, मेरा कहने का तात्पर्य यह कि मदन मोहन जी का चिंतक है, लेकिन अभिलाषाओं की पूर्ति तो विराज गोवर्धन जी से ही हो रही है. नित्य नदी सर्वेश्वर महाराज पर बैठकर वो उनका चिंतन किया करते और उसके बाद जब अवस्था में उनका चलना अवरुद्ध हो गया, तब विराज जी ने उनको अपने स्वरूप के रूप में एक शिला प्रदान की, जिसका दर्शन हम राजावर मंदिर में नित्य प्रति करें. इसी प्रकार से माध्यमपुरी के प्रमुख जो विराजी ने अपना स्वरूप दिखाया उसमें निश्चित रूप से वह भाग का आविष्ट था, क्योंकि जिसे अन्नकूट महोत्सव हुआ और उनकी तरफ से महिला भटक की नहीं हो रही थी, ये उनकी स्मृति थी। इन विराज पर्वत की कन्याओं है और पर्वतों की तरह जो कन्या है वो अवरुद्ध नहीं है, हर कन्या अपना एक अलग मार्ग रखती है। इसका एक प्रमाण है राघव पंडित, इसी गुफाओं में उन्होंने खड़े किया। इसी प्रकार से रूप गोस्वामी ने जो वर्णन किया था कि श्री राधिका जी की जो बेटी है वो नागिन जैसी है, तो सनातन गोस्वामी को शंका भी, उसकी अनुभूति भी श्री गिरिराज गोवर्धन में ही हुई कि वास्तव में राधिका की जो बेटी है वो नागिन जैसी है, जैसे कथा है कथा सुनाई। गिरिराज जी ये जो कहते हैं कि क्षण क्षण घटता जा रहा है, मैं इसे भी नहीं मानती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि गिरिराज जी क्षण क्षण ब्रज की रज में मिलते जा रहे हैं। इसकी उपत्यकाएं उन्नत नहीं है, इसके शिखर ऊर्ध्वगामी नहीं है, ये विस्तृत है, दूर दूर तक फैला हुआ है, सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जब गिरिराज गोवर्धन की पूजा भगवान श्री कृष्ण ने करवाई, उसी समय से सारे विश्व में ये खबर फैल गई कि गिरिराज ही एक ऐसे देवता है जो स्थावर नहीं है, जिनके दर्शन से हमारे हृदय की स्थावरता दूर हो जाती है, जिनके दर्शन मात्र से हमारे हृदय की स्थावरता अर्थात जड़ता हमारे हृदय की जड़ता नष्ट हो जाती है। वे चेतनावान है, उनकी हर शिला चेतनावान है। जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि विराट मेरा ही रूप है, तब उन्होंने स्पष्ट रूप से सब ब्रजवासियों को बताया था कि गिरिराज की कन्या इसका मुख है, वृक्ष इसकी भुजाएं हैं और पाषाण इसके अंग हैं। इन वृक्ष रूपी भुजाओं से उन्होंने ब्रजवासियों से भोजन मांग मांग कर खाया था। जब नंद बाबा कृष्ण को समझा रहे थे कि बेटा जब वो जो गाय हमारी संपत्ति है ये हम पर घास खाती है और घास के लिए हमें जल की आवश्यकता है, जलों के लिए बादलों की आवश्यकता है और बादल तो इंद्र के अधीन है। तब कृष्ण बाबा की बात कही थी कि बाबा यद्यपि देवताओं की पूजा करने से और देवताओं के द्वारा आराधित होने से और हमारे द्वारा हविष्यान प्रदान किए जाने से देवता संतुष्ट होते हैं, तो फिर इनको अमृत की क्या आवश्यकता है, ये तो अमृत पीकर हमेशा सुखी और संतुष्ट रहते हैं, तो हमारे अभिशानी से प्रयोजन क्या। और यदि इंद्र की वर्षा का कारण है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि स्वयं रजोगुण से ही वर्षा होती है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने यह निश्चय किया कि अब इंद्र के गुणमत की चिकित्सा मुझे करनी है और गोवर्धन पर्वत की पूजा का मंडल करना है, तभी उनकी इच्छा मात्र से इंद्र के हृदय में ऐसी इच्छा हुई कि अब बरसात की जाए। जब वर्षा का संपात हुआ, सावन तक मेघों को उसने बुलाया और उसने कहा, अरे कृष्ण समझता क्या है, पशु को चलाने वाला जानता नहीं है मेरा क्या महत्व है। लेकिन इसमें इसको भी फर्क यह रह सकते हैं कि कृष्ण जो
मनुष्यों की तो बात ही क्या है, पशु भी कृष्ण से उतना ही प्रेम करते हैं।
पशु भी कृष्ण से इतना ही प्रेम करते हैं, तो उसने सावरकर नाम इत्यादि उड़नदास मेघों को बुलाया और कहा, ब्रज में ऐसी बरसात कर दो कि सारा ब्रज डूब जाए और भुवन कांपने लगे। श्री कृष्ण बोले, अच्छा ऐसी बात है, तो आज एक उत्सव होगा, सम्मेलन महोत्सव होगा। भगवान श्याम सुंदर ने जो दो लीलाएं की थी, काली मंडल लीला और गोवर्धन धारण लीला, ये विशेष रूप से श्री राधिका जी की प्रसन्नता के लिए की थी। आज सारे सांसार प्रेम की पराकाष्ठा होगी, पूर्व राग नयन उत्सव आप सब तरह का स्वागत किया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने मन में इच्छा की, इधर जब भाई बच्चा संपन्न होने लगा तो ब्रज में विशेष रूप से गाय बैल और बछड़े इनके ऊपर ओले चढ़ा छूट होकर गिर पड़े। तो बैलों के ऊपर जो है कलकुत होता है उसके ऊपर ओले चढ़ा छूट होते थे, गायों की आंखें ऊंची हो गई, पूंछ ऊपर उठ गई, घबराने लगे। तब ब्रजवासियों ने जाकर कहा कि कृष्ण आज फिर से वक्त आ गया है, तुमने पहले दावा में पान किया था, आप समुद्र में बड़वा लगा दिया है। कृष्ण तुम्हारे अलावा हमारा कौन है जो इसकी रक्षा कर सकता है। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी, मन में विचार किया कि आज गोवर्धन धारण करने का समय आ गया, आज के बाद विश्व के सभी लोग क्योंकि श्री राधा जी के हृदय से जो निस्तृत है, उनकी इच्छाओं से जो उद्भुत है, इसकी महिमा को पहचाने के, और जब मैं इस प्रपंच को छोड़ दूंगा उसके बाद लोग यहाँ पर आकर आराधना करेंगे, अपने ध्यान में अपने चिंतन में इस लीला का स्मरण करेंगे और धन्य धन्य हो जाएंगे, उनको निराश करने के लिए आज मैं ये लीला करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा मन में सोचा ही था कि भगवान ने अपनी कनिष्ठिका की गिरानी को उठा लिया। भगवान की कनिष्ठिका पर गिरानी विराजमान हो गए। तब उन्होंने विश्वासियों से कहा आओ इसके अंदर प्रवेश करो। तो सबसे पहले गोपाल गायों के साथ अंदर आए, उसके बाद ब्राह्मण लोग अंदर आए, उसके बाद सखिया धनिया आदि कन्याएं इत्यादि ने प्रवेश किया, उसके बाद श्रीमती राधाजी इत्यादि उसके आगे सामने बैठे, उसके बाद सारे ब्रजवासी बैठे और आगे आकर बैठे नंद बाबा, माता यशोदा और लांगड़ी बलदेव जी भगवान के नीचे आकर बैठे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अरे तुम कुछ सोचो मत, कुछ संदेह मत करो, कुछ विचार मत करो। जैसे प्रलय काल में एक कौतुक होता है कि भगवान नारायण सब जीवों को सूक्ष्म शरीर में अपने अंदर प्रवेश कर लेते हैं, लेकिन आज तो यहाँ पर स्थूल रूप से सब लोग इसके अंदर प्रवेश करेंगे। जब भगवान ने विराट पर्वत उठाया सूर्य के नीचे क्या देखा कि वैसा ही नंद ग्राम है, गायों को खाने के लिए वैसी ही घास है और उसके नीचे सुंदर स्वर्ग है, विरु स्वर्ग है, पाता लोग है, जितना आनंद चाहे आप लोग रह सकते हैं, आपको अपने निवास और यहाँ के निवास में कोई अंतर नजर नहीं आएगा, आइए आप सब लोग प्रवेश कीजिए। इस तरह से भगवान ने बैठाया और जब भगवान विराट पर्वत धारण कर रही है तब नंद बाबा और माता यशोदा का हृदय बड़ा विवल हुआ। मेरा छोटा सा लाला इस जगह की कनिष्ठिका में इस तरह से विराट पर्वत जैसी भारी चीज को धारण किए हैं और यह विराट पर्वत भगवान के हाथ में, भगवान तो निमित्त बांट रहे हैं, भगवान विराट जी को ऐसा सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं और जो विराट पर्वत ऊपर ही ऊपर उठता चला जा रहा है। उससे पूछा था कि 7 वर्ष का बालक कितना छोटा है तो गिरिराज पर्वत के अंदर सब लोग कैसे आ गए, तो गिरिराज पर्वत ऊपर ही ऊपर उठकर चला जा रहा था, मानो एंटरटेनर तो नंदन भवन का तिरस्कार कर देगा। लोग का लोग पर्वत सब घबरा गए, सुमेरु घबरा गया, कैलाश पर्वत घबरा गए, ये क्या हो रहा है, कैसी लीला हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो लीला हो रही है वो प्रेम रस की लीला है, रास रस की प्रवेशिका है। सब बैठे हैं मैया यशोदा भगवान कृष्ण के हाथ का बार बार स्पर्श करती है और गिरिराजी से कहती है हमने तो तुम्हारी पूजा की थी ना, तुम तो मूर्तिमान देवता हो, तुम लघुता को धारण करो, तुम कोमलता को धारण करो, तुम कोमल बन जाओ। और जब श्री कृष्ण मैया से कह रहे हैं मैया ये तो आकाश में स्थिर है, मैं तो खाली निमित्त मात्र हूँ, तो मैया कहती है कृष्ण तू बहुत ज्यादा ही समझदार बनता है ना अपनी आप को, यदि आकाश में स्थिर रह सकता है तो तू अपना हाथ हटा ले, आकाश में स्थिर रहने दे। मधुमंगल कह रहे हैं अच्छा कृष्ण एक काम करो, तुम थक गए होगे हट जाओ, मैं इसको अपनी लाठी में धारण कर लेता हूँ। भगवान मुस्कुराए ले ठीक है, कभी यशोदा बोली मधुमंगल तेरी किसी उद्धता से मेरे कृष्ण की बुद्धि खराब हो गई है, अरे जो चीज वर्षों से चली आ रही है, जिस देवता का उत्सव हम इतनी सदियों से करते चले आ रहे हैं, क्या उसका इस तरह से परिवर्तन किया जाएगा, अब ये देवता हमको क्या सुख देने वाले हैं, ऐसी हमारे पर आपदे आने वाली है, विपत्ति आने वाली है, ये सब मेरे ही कारण हुआ है। तब नंद बाबा कहते हैं क्यों इसको फटकार नहीं दो, ये तो कृष्ण का उत्साह का वर्णन कर रहा है। इधर सारे ब्रजवासी देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जब गिरधारण धारण किया है तो उनका जो वाम हाथ है उधर की जो त्रिवली है वो दिखाई नहीं देती, ये हाथ ऊंचा है, भगवान का कुक्षी हाथ देखा जा सकता है, नख पर गिरधारण धारण है, हाथ की लालिमा देखी जा रही है, उनका जो दाहिना हाथ का पीतांबर है और जो कमर का ढूंढने का भाग है वो इधर झुका हुआ है, सौंदर्य का पान किया जा रहा है। अरे 7 वर्ष का कृष्ण हो गया, इतना सुंदर तो कृष्ण को हमने कभी नहीं देखा, ऐसे माधुर्य का पान तो हमने कभी नहीं किया। तो मधु मंगल कह रहे यशोदा कभी तुमने कृष्ण को इतना सुंदर देखा है? तो यशोदा बोली तू इतनी सुंदरता की बात कर रहा है, मेरे तो प्राण उठे चले आ रहे हैं, मेरा लाला ऐसे शीतल पड़ गया है जैसे कि ओढ़ों के नीचे कमल को दबा दिया जाए, देख मेरा लाला कैसा मुरझा गया है। कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं और मैया के कहने चिंता मत करो। इधर श्यामला जी राधा जी आपस में कृष्ण के सौंदर्य का पान कर रही है और राधा जी वहां पर आंचल थोड़ा सा उठाकर तिरछे नयनों से घूंघट की आड़ से भगवान को देखती है, मन मन मुस्कान करती है। इसके आगे भी श्रृंगार पर बहुत सी लीलाएं हैं क्योंकि गिरधारी ऐसा स्थान है यहाँ पर सत्य रस और श्रृंगार रस साथ में वात्सल्य रस तीनों की पुष्टि होती है, इससे लीला में किसी प्रकार का लीला भाग नहीं आता। हमारे जो वल्लभाचार्य जी के जितने भी कुंभनदास शीघ्रदास परमानंददास गोविंददास जदुबनदास जितने भी तथा थे सब ने यही पर चंद्र सरोवर में गिरधारी जी के आसपास बैठकर संकीर्तन से भगवान की उपासना की। भगवान श्री कृष्ण ने अब विचार किया कि 7 दिन 7 रात हो गए, मिट्टी का दिन चारों तरफ उठ गया, बारिश की एक बूंद ब्रज में नहीं गिरी, चारों तरफ मिट्टी ने उनको सोख लिया, इंद्रधनुष भ्रमण चपना चूर हो गया, दर कुशाली का दर सब समाप्त हो गया, उसका मत जो उन्मत्तता थी वो सब विदीर्ण हो गई। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा विराजित करने का प्रयास किया, उन्होंने सबको पहले बाहर निकाला, सबसे पहले जो पीछे बैठे थे वृंद गोपाल भाई वो बात गए, उसके बाद सखियां गई, उसके बाद कन्याएं गई, उसके बाद गाय एकदम हड़बड़ा की बाहर निकली, भगवान श्री कृष्ण स्वयं आ आए और पीछे से कुछ छत्री की तरह उन्होंने धारण कर रखा था, उस विराट पर्वत को वापस विराजित किया। इस तरह से विराट पर्वत भगवान श्री कृष्ण के जो चिंतन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा की गई जो लीलाएं हैं उनमें विशेष रूप से हमारे चिंतन का केंद्र बिंदु है। श्री विराट की जो स्थिति है वो हम सबके लिए मननीय है, स्मरणीय है और जीवन कोटि कोटि जन्मों के लिए आराधनीय है। हम सब लोग आज श्री गुरुदेव के सानिध्य में श्री गिरिराज गोवर्धन से प्रार्थना करेंगे कि जो हमारा मनोविष्ट है और जिसके लिए हम बार बार जन्म ले रहे हैं लेकिन अब श्री गुरु जी के चरणों में आ गए तो गुरुदेव हमारे मनोविष्ट को समझ श्री गिरिराज गोवर्धन से हमारे लिए अवश्य प्रार्थना करेंगे कि वो जो राधा का तत्व है जो कृष्ण की लीला का माधुर्य आस्वादन है वो हमें अनुभूत हो सके।
तुम्हें बोला दो तो बोलो जतटुक हूँ अंग्रेजी तो बोलते हैं हिंदी तो बोले ही छे कैनू एक तो बोले दो सामान दो तुम भी बोल दो अंग्रेजी में अंग्रेजी में तुम्हें बोल दो थोड़ा सा यू कैन
स्पीक
बोल
आसले नेगेटिव पॉइंट्स बहुत देखते
हैं। और एक बात है मेरे समझ में नहीं आया कि माने बच्चों को कईयों को सखाओं को सखी में निकाला माँ बाप को इसको दबा दिया था मुझे समझ नहीं आ
रही। मैंने कहा जिस क्रम में
सभी बातें कही जाती है अंग्रेजी बोल सकती है इसमें नहीं बोल सकती तो अभी बोल दो रामचंद्र जी ही है ठीक है
विष्णु देवता
रामचंद्र
और जितना होगा जितना है उतना ही बोल अंग्रेजी बोल नहीं सकती है अंग्रेजी नहीं बोल सकती फटाफट
बोला था गोविंद पर मुझे लगा कि जैसे फ्लो आएगा कि
बोलने का फायदा
है इंग्लिश स्पीकिंग है सब
ठीक
वेल
बेटा फ्लो नहीं आ रहा
है मधु देवी वाले दिस ड्राइविंग फ्लॉलेसली एंड सो स्लोली about Kailash Govardhan. Frankly, I could not get a chance to note it down. It was so fast and eloquent.
And so fast.
Whatever could retain in my mind, I will try to explain. She narrated very nicely that this Kailash Govardhan, it is a place which is worshipped by everyone and all type of pastimes took place in this Giriraj Govardhan. When Krishna decided to break the proud of, to crush the proud of Indra.
First you should tell Sanatana Goswami here in his old age. He came and did parikrama.
She started this Gurudev reminded me, I forgot frankly. She started with that this is the place where all our Goswamis they came and worshipped. So Sanatana Goswami, he is worshipper of Madan Mohan, whose temple is established in Vrindavan. So his Prakhan is Madan Mohan, but every day he used to go to Govardhan and do his parikrama. He must be meditating upon his Prakhan Madan Mohan, but trying to grab and get and obtain all those desired things from Kailash Govardhan. When he became old and he could not do parikrama because of his age, then Krishna himself gave him one of the Giriraj Shila. And thus he is always taking shelter of Giriraj Govardhan. Similarly, Srila Rupa Goswami Pad, when he wrote one very nice verse, where he told that Radha Rani's beard looked like a snake serpent. And Sanatana Goswami Pad objected that Radha Rani is so wild and how you are comparing her bread with this serpent. At that time, on this Giriraj Govardhan, Sanatana Goswami Pad said that no, Radha Rani's bread look like a serpent. Similarly,
Madhavendra Puri
Pad, he also took shelter of Giriraj Govardhan.
He did Annakoot
for months together. She said, in Giriraj Govardhan, he felt a severe feeling of separation. And therefore, that feeling he fulfilled by performing Annakoot for months together and doing Abhishek of Giriraj Govardhan for months together. Then she narrated how Giriraj Govardhan was lifted by Krishna. When Indra, he sent his all the clouds, 49 type of clouds, including Samantha cloud, to
to rain and smash whole brush and get it inundated and flooded. But Krishna, within his heart, he had some feeling. He wanted to enjoy Shingara Ras. He wanted to see Radha Rani. He wanted to celebrate a great Mahotsav. In order to celebrate that great Mahotsav. You understand Mahotsav?
Festival.
To enjoy, to celebrate that festival. He is taking this situation to celebrate a festival. What festival? Festival of assembly. Assembling of all Vrijvasis at a place together.
That is called Nayanotsav.
Nayanotsav. Nayanotsav means festival of getting opportunity to seeing each other with a feeling one has for Krishna. And then he lifted that Giriraj Govardhan on his finger of small finger of the left hand. And how the people came inside it. She said, first all gopis with cows, they came into it. Mother, father came, then Sakhi came, and lastly Radharani also with her friend, she came. They are two different situations. Balramji, Yashodari, and Nand Baba, they sat very close to Krishna, next to Krishna. Now there are different feelings of different Vrijvasis. Madhu Mangal is saying, look, Krishna is doing this thing, and he is looking so beautiful and so good looking, charming. And Yashoda saying, you are seeing Krishna charming? I am feeling, I think that he is getting pale and he is getting weak because of doing such a troublesome labor. Then she is praying to Giriraj Govardhan, oh Giriraj Govardhan, please be light, please be soft, please be benevolent on us. We have been worshipping you, so just you should remain light. And similarly, Madhu Mangal said, oh Krishna, you must be tired. I will take my stick, I will set my stick over here and you should take some rest. And Krishna is smiling. How can you do it? And Giriraj Govardhan, what is he doing? He is rising up and up and up. It is not a Krishna finger who is lifting him. It is Krishna's desire which is lifting him. And he is beating and challenging all the mountains around Sumeru, Kailash and others. And he just defeated them by his height and by his greatness. Giriraj Govardhan is very happy today. He is on the hands of Krishna. It is a fortune, very great fortune. Then Gopi, Radha Rani, she is also seeing Krishna and Krishna is seeing her. It is first time, this is called Purraj, first meeting. So many feelings coming inside the heart, can't be explained. And then after 7 days, well, one thing she said, when everyone came into this, we need Giriraj Govardhan, then Krishna said, don't be worried, this place, it will give you more and more facilities. It was a place better than bread. So much grass is there for grazing the cows, and every facility was there. Water and everything, like heaven, like Patal, everything was in it. So none of the Vrijvasis felt any problem or inconvenience. Just as when we come here, sitting together so many persons and coming under the shelter of Gurudev, we don't feel any inconvenience. This is from my side. One thing more, when the last time came, no direct took place to bring, then at that time, all these Vrijvasis, they started going. Those who came first, they went last. Those who came last, they came first, they went out first. And last, Krishna, he came out, and then he placed Giriraj Govardhan in this place. and he showed the greatness of Lila Govardhan for onward generation to worship him and get all his cherished desires. So,
कृष्णा प्रसादेन बाहर कर कृष्णा प्रसादेन समस्त शैल साम्राज्य मापनोति चबैल तुम्हारे समझ में नहीं आएगा वो ऐसी बोलती है कि तुम्हारे समझ में ही नहीं आएगा
इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आपने इसे सुना नहीं जब पिता जी ने स्वतंत्र जीवन लाले पड़े हैं
अरे वहाँ पर जैसे जगह मिल गई बैठ गए सब लोग उसमें कोई बात शंका की कोई शंका की बात नहीं कृष्णा प्रसादेन साम्राज्य अरे भाई कहने दो उनको सभी कर कृष्णा प्रसादेन समस्त शैल साम्राज्य माप्नोति च वैरिणो सकलस्य जनपाप बलिं च साक्षात् गोवर्धनो मे गोवर्धनो मे जो कार्य है उसको रिपीट करो बोलो महेंद्र वज्र हतमप्यजानन गोवर्धनो मे दिशतामभीष्टम् गोवर्धनो मे दिशतामभीष्टम् तत्रैव कृष्णो विषभानुपुत्र दानं गृहीतं कलहं वितेने सुते विहार महत्ततः श्री गोवर्धनो मे दिशतामभीष्टम् गोवर्धनो मे दिशतामभीष्टम् सरसासु समीरहस्ति यत्रैव नीपादि परागधूले स्मत्वा सरसासु समीरहस्ति यत्रैव नीपादि परागधूले आलोलयन खेलति चारु शास्त्री गोवर्धनो मे दिशतामभीष्टम् गोवर्धनो मे दिशतामभीष्टम् कस्तूरिकाभिषयकल्किमुत्रे तुहं प्रभो ससमुहुर्वितिन्वन् वर्धनो मे दिशतामगेशम् गोवर्धनो मे दिशतामभीष्टं गोवर्धनो मे दिशतामभीष्टं वंश प्रतिध्वनि अनुसार भस्म दिदेक्षो जत्र हरिं हिरण्य जन्तो लभन्ते नहि विस्मितासि गोवर्धनो मे दिशतामभीष्टम् गोवर्धनो मे दिशतामभीष्टम् गोवर्धनो मे दिशतामभीष्टम् गङ्गामनुना विराधा आरुह्य मध्ये तु निमग्न नौका राधानुगलौ बभौ स गोवर्धनो मे दिशतामभीष्टम् गोवर्धनो मे दिशतामभीष्टम् गोवर्धनो मे दिशतामभीष्टम् महाकवे किं हरिदास वर्या महान् गोवर्धनो मे दिशतामभीष्टम् गोवर्धनो मे दिशतामभीष्टम् गोवर्धनो मे दिशतामभीष्टम् एतत् पठेत् यो हरिदास वर्य महानुभावाष्टकमे माधवयो पदाब्ज दर्शन् सबिन्देत अचिरेण धीर गोवर्धनो मे दिशतामभीष्टम् गोवर्धनो मे दिशतामभीष्टम् गिरिराज धरण की महा Gopinjan, 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 Gopinjan,